मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 5 नवंबर 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत ही हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। दोस्तों, आइए अब हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के कुछ अंशों के माध्यम से, यूं कह लीजिए कि अपने जीवन को थोड़ी सी जानने और समझने की कोशिश करते हैं, जो हालांकि हुआ तो अब से लगभग 500 साल पुराना है, लेकिन इतिहास का एक हिस्सा है। देखिए, इतिहास का हिस्सा है, पुराण या मिथक का हिस्सा है, कहने में जो फर्क है वो इस बात को लेकर के है कि एक बार मिथक पर थोड़ा सा आप विश्वास कम करेंगे या नहीं ही करेंगे। हो सकता है कि आप पूरा विश्वास करें या आपकी आस्था के ऊपर है। पुराणों में जो कहानियां होती हैं उनके बारे में भी यही बात है, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि जो बातें इतिहास में लिखी जाती हैं वो काफी कुछ सच्ची ही होती हैं। घटनाएं तो सही ही होती हैं, ऑलमोस्ट, यानी कि बिल्कुल सही ही होती हैं, कोई गारंटी है। जीवनियां भी लगभग लगभग सही ही होती हैं, हालांकि ठीक है, जीवनियां जब हम लिखते हैं तो हमारा अपना नजरिया काम करता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि हम कर क्या रहे हैं, हम पाना क्या चाहते हैं, हम सिद्ध करना क्या चाहते हैं, और उसी के अनुसार हम उन जीवनियों को रूप भी दे देते हैं। लेकिन जीवनियों के साथ एक बात है कि अगर उसमें कोई गलत बात लिखी जाती है जो बेहद गलत है, तो उसको आप बकायदे विश्लेषित कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि कुछ और दूसरे साक्ष्य मौजूद रहते हैं, उनके आधार पर उसका खंडन कर सकते हैं, फिर जवाब देने वाला उसका जवाब भी दे देता है। तो इस तरीके से यूं कह लीजिए कि एक लंबे दौर के बाद जो जीवनी का स्वरूप भर कर आता है वो कम से कम इस तरीके का तो हो ही जाता है कि हम उस पर कमोवेश विश्वास कर सके। तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसी ही जीवनी के बारे में आप सबसे बात करने जा रहा हूं जो व्यक्तिगत रूप से, यूं कहूं मैं, कि मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और अभी पिछले साल जब हम लोग इटली गए थे, यूरोप की यात्रा पर गए थे, तो इटली में जब हम लोग रोम में थे, रोम की बात नहीं, शायद फ्लोरेंस की बात है, फ्लोरेंस में जब हम लोग थे, तो मैं बकायदे उस जगह गया था जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था, और बकायदे मैंने उस जगह की धूल अपने माथे पर लगाई, साष्टांग उसे उस जगह को प्रणाम किया। और मेरे साथ जो दूसरे लोग थे वो आश्चर्य कर रहे थे कि यहां न तो कोई मस्जिद है, न कोई गुरुद्वारा है, न कोई मंदिर है और न कोई चर्च ही है, फिर ये प्रणाम किसको कर रहा है। तो मैंने कहा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को प्रणाम कर रहा हूं जो मेरी लिहाज से एक तरीके से इन सबसे भी ज्यादा बड़ा है। और दरअसल वो जगह ऐसी थी जहां के बारे में मुझे बताया गया कि माइकल एंजेलो बचपन में यहां खेला करते थे। फ्लोरेंस उस स्थान का नाम है, माइकल एंजेलो यहां खेला करते थे। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आज किसकी जीवनी के बारे में बातें करने जा रहा हूं, माइकल एंजेलो। इससे पहले भी मित्रों, मैंने माइकल एंजेलो के बारे में काफी बातें की होंगी, जैसा कि मैंने कहा कि वो मेरे दिल के बहुत करीब थे। और फ्लोरेंस में फिर जो एक किताब की दुकान थी वहां मैं गया, दूसरे लोग मार्केट में बिजी थे, मैं एक घंटे तक उस दुकान में रहा और स्पेशली मैंने माइकल एंजेलो से संबंधित जो कॉफी टेबल हाउस किताबें होती है ना, जिसमें चित्र वगैरह बहुत होते हैं, उनको पलटता रहा और माइकल एंजेलो के अलग अलग रूपों को देखता रहा और उन्हें सच पूछिए तो अपने अंदर समोता रहा, समाता रहा, और उनकी यादों में, स्मृतियों में, वैसी स्मृतियां नहीं जिनको मैंने देखा होगा, लेकिन आप संवेदना के स्तर पर भी तो पहुंच सकते हैं ना, अपने आप को भिगोता भी रहा। वो एक घंटे जिंदगी के बड़े खूबसूरत तरीके से बीतने वाले समय मेरे रहे। माइकल एंजेलो की जो जीवनी है, एक जीवनी मैंने पढ़ी थी, उसका एक छोटा सा अंश मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। उस छोटे से अंश को मैंने खासकर इसलिए चुना है मित्रों कि जिसे हम बहुत महान व्यक्ति समझते हैं, जो बहुत बड़ा है, इनफैक्ट क्या उसमें कुछ दूसरी कमजोरियां नहीं रहती होंगी? क्या वो हर दृष्टि से महान होता होगा? क्या हर दृष्टि से वो बड़ा होता होगा? क्या वो उन्हें प्रकृति कुछ अलग तरीके से ही गढ़कर, रचकर, बनाकर इस धरती पर भेजती है? क्या वे इसी के लिए ही बने होते हैं, या कि वो बड़े बनते हैं अपने किसी एक कार्य विशेष से, कुछ ऐसा कर जाते हैं कि इतिहास के अध्यायों में उनका नाम दर्ज हो जाता है, लेकिन उनमें भी हम सब की तरह ही मानवीय कमजोरियां मौजूद रहती हैं। हाँ, वो जिस काम को कर रहे होते हैं उस काम के प्रति वे इतने ज्यादा समर्पित होते, इतने ज्यादा समर्पित होते हैं कि उससे कोई समझौता नहीं करते, और उसके रास्ते में वो किसी को आड़े भी नहीं आने देते, चाहे वो कोई दूसरा व्यक्ति हो, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो। हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ होता यह कि जब हम कोई भी बड़ा काम करते हैं तो हम ये देखना भूल जाते हैं कि हम खुद ही इस काम के रास्ते के सबसे बड़े बाधा बने हुए हैं, हम ही स्पीड ब्रेकर हैं। हम दूसरों को स्पीड ब्रेकर मानते हैं और उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, उन्हें निपटने में अपनी क्षमता और अपना समय लगाने लगते हैं, खुद को बख्श देते हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी बाधा होते हैं। अदरवाइज याद रखिए कि कमजोरियां सभी में होती हैं। इस छोटे से अंश में आप उसे ही पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, उसे ही, राइट? माइकल एंजेलो बोनारोटी का पूरा नाम था और इनका जन्म 1475 में हुआ था, 1475, 550 साल लगभग पहले, राइट? अब मैं उस अंश को पढ़ रहा हूं मित्रों जो मैं मेरे पास मौजूद है। माइकल एंजेलो जब बहुत छोटा था तभी वहां के शासक लॉरेंजो डी मेडिची, फ्लोरेंस के बहुत धनी परिवार था, और उस मेडिची परिवार का खासकर यूरोप स्पेशली रोम की कला संस्कृति साहित्य के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान है, और ये बहुत कला साहित्य और संस्कृति के प्रेमी थे। जैसे हमारे यहाँ के राजा महाराजा होते थे ना, वो संरक्षण दिया करते थे लोगों को अपने दरबार में, और उससे कला संस्कृति विकसित होती थी। मेडिची परिवार उसी तरह का एक परिवार है जिसे इटली में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है, वो है मेडिची, राइट? माइकल एंजेलो जब बहुत छोटा था तभी वहां के शासक लॉरेंजो डी मेडिची ने उसकी प्रतिष्ठा को पहचान कर उसे अपने घर पर रहने तथा काम करने की सुविधा दे दी थी, राइट? दिलचस्प बात यह है कि एंजेलो एक छोटे कद का कमजोर व ढीला ढाला व्यक्ति था, पर वह जो मूर्तियां तैयार करता था वे सब ऊंची, हृष्टपुष्ट, सुंदर और बलिष्ठ व्यक्तियों की होती थी। इनकी एक बनाई हुई मूर्ति है मित्रों डेविड, फ्लोरेंस में ही लगी हुई है, वहां बहुत सी दूसरी मूर्तियां लगी हुई है ना, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है वो, और वहां कभी कभी उनका वो एक तरह से संसद हुआ करती थी, ओपन में उस तरह की बैठकें हुआ करती थी, वहां बहुत सी मूर्तियां लगी हुई है, उसमें डेविड की ओरिजिनल मूर्ति लगी हुई है। मैं हालांकि इससे पहले भी रोम जा चुका हूं, लगभग शायद 1995-96 में मैं गया था, उस समय फ्लोरेंस में नहीं जा पाया था तो ओरिजिनल मूर्ति नहीं देखी थी। इस बार मुझे ओरिजिनल मूर्ति देखने का मौका मिला, वो क्या मूर्ति है, मैंने उस मूर्ति को भी प्रणाम किया। हालांकि मेरी ऊंचाई इतनी कम थी कि मैं मूर्ति के पैरों तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन फिर भी चलिए, जिस पर वो मूर्ति रखी हुई थी, जिस पोडियम पर, वहां तो मैं पहुंच ही सकता था, वहां तो कोई रोक नहीं सकता था। उस मूर्ति को आप देखिएगा तो लगेगा कि वास्तव में कितना बलिष्ठ व्यक्ति है, कितना हृष्टपुष्ट व्यक्ति है, और सच बात यह कि वो कितना सुंदर व्यक्ति है, वो उस प्रतिमा के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि वो खुद बहुत कमजोर हैं, छोटे कद के हैं, ढीले ढाले व्यक्ति हैं, लेकिन जो मूर्तियां बना रहे हैं वो बिल्कुल उससे अपोजिट हैं। यहां पर एक तरीके से मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत दिखाई देता है कि जो हम नहीं होते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हम ये हों, तो हम कैसे वैसा हो सकते हैं। तो वो डेविड की प्रतिमा या दूसरी प्रतिमाओं में माइकल एंजेलो वैसा होने की कोशिश करते थे। ये एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, सिंपल सा। आगे की पंक्तियां ये देखते हैं, पर वह देखिए बलिष्ठ व्यक्ति की होती थी। माइकल एंजेलो एक झगड़ालू व्यक्ति भी था, वह तुनक मिजाज था और बात बात पर झगड़ा कर बैठता था, पर वह अत्यंत, ध्यान रखिए, पर वह अत्यंत एकाग्रचित और मेहनती था। वह अपने काम के प्रति इतना अधिक समर्पित था कि काम करते करते स्टूडियो में ही सो जाता था। उसे काम से इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती थी कि वह हाथ मुंह धो ले। वह कभी कभार ही अपने जूते उतारता था। उसके जूते कुत्ते के चमड़े के बने होते थे और उनको न उतारने का कारण कभी किसी की समझ में नहीं आया। इस माइकल एंजेलो की लंबी प्रतिस्पर्धा अपने समय के लियोनार्डो द विंची से चलती रही और कई मायनों में लियोनार्डो को उससे हार माननी पड़ी। इसलिए लियोनार्डो के मन में माइकल के लिए ईर्ष्या की भावना भी थी। मित्रों, आपको ध्यान होगा बहुत पहले मैंने लियोनार्डो द विंची के बारे में भी आपको बताया था, जिन्होंने मोना लिसा नाम का चित्र, जो विश्व प्रसिद्ध चित्र है, वो बनाया है। लियोनार्डो द विंची, देखिए वो भी बहुत महान व्यक्ति, और वो तो खैर अद्भुत प्रतिभा के व्यक्ति हैं, बहुत ही मल्टी डायमेंशनल जीनियस हैं वो। उनके मन में भी ईर्ष्या का भाव था। तो यहां आप देख रहे हैं कि सब व्यक्ति ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है यह है कि वो एकाग्रचित और मेहनती था। जूते भी नहीं उतारता था, हाथ मुंह भी नहीं धो पाता था। मतलब चित्र बनाते बनाते वो लेट कर चित्र बना रहे थे, जब वो रोम की उसको रंग रहे थे, छत को रंग रहे थे, वहां जो चर्च है वेटिकन सिटी की, तो उनकी कमर टेढ़ी हो गई, कमर हमेशा के लिए झुक गई उनकी। सोचिए, इतने काम के प्रति समर्पित थे, शादी नहीं की, और उनको सब जब पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं की, क्यों नहीं कर रहे, तो बोले कि नहीं नहीं, दो दो पत्नियों को कैसे आप पाल सकते हो, एक को संभाल लूं वही बहुत है। तो किसको उन्होंने पत्नी कहा था? अपने काम को, कि मैं तो पूरी तरह से यही समर्पित हूं, मैं दूसरा काम नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि आप भी शादी मत करिए, वो एक दूसरी रिक्वायरमेंट थी, दूसरे युग की बात थी, आप उसका अर्थ ये मत लगा लीजिएगा। एक बहुत ही खूबसूरत बात माइकल एंजेलो ने कही थी मित्रों, उसी के साथ ही मैं भी इसे समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था कि काम करो तो ऐसा करो, झाड़ू लगाने वाले से उन्होंने कहा था कि झाड़ू लगाओ तो ऐसा झाड़ू लगाओ कि जब कोई वहां से गुजरे तो उसे चीजें इतनी साफ सुथरी दिखाई दें कि वो लोगों से पूछे कि यार यहां झाड़ू किसने लगाया था। ये काम के प्रति उनकी निष्ठा थी, उनकी फिलॉसफी थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं माइकल एंजेलो के इस छोटे से जीवन प्रसंग को यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। आप सबकी छूट है कि इसमें से आप क्या ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं और किसे रिजेक्ट कर सकते हैं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।